अभी का विषय है शिव साजन ज्ञान का दरिया और आज का समान क्या है, मैं सजनी शिव साजन की। और आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्ति सेना। तो आज की जो ये विषय है इसकी प्रेरणा वास्तव में कल जो नीचे समर्पण समारोह हुआ है उससे मिली कि कैसे 450 कन्याएं शिव सजनी बनकर शिव साजन को अपना जीवन समर्पित किया और उसके अपने समर्पित जीवन का समर्पण समारोह मनाने वे मधुबन आई आबू अब्बा के घर में। तो नीचे आबू रोड में स्थित शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में इन शिव सजनियों का दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह हुआ। तो मन में आया कि क्या सिर्फ जो समर्पण समारोह करते वे ही सिर्फ सजनिया है, उनका ही सिर्फ शिव साजन है, या जिन्होंने विधिवत समर्पण समारोह नहीं किया है लेकिन मन बुद्धि से पूर्ण रीति से उसको समर्पित है, उन्हें भी तो क्या कहने में आएगा, शिव सजनी ही कहने में आएगा। लेकिन जैसे कहा कि आज की मुरली में जब शिव शक्ति सेना शब्द आया तो दीदी ने कहा आज सिर्फ शिव शक्ति सेना है, लेकिन हम बोलते हैं शिव शक्ति पांडव सेना भाइयों को खुश करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आज हमने आपको सम्मान दिया कि मैं सजनी हूं शिव साजन की, तो बहनों को तो इजीली एक्सेप्ट करना, हाँ स्वीकार हो जाता है बहुत जल्दी, क्या भाइयों को स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं कहा था कि मैं सजनी शिव साजन की, मैं आत्मा सजनी शिव साजन की, तो बात मेल और फीमेल की तो है ही नहीं, बात तो है उस मेल और फीमेल को के चोले को धारण करने वाली आत्मा की। शक्ति तो वो है, चाहे वो पुरुष तन में है वो आत्मा, और चाहे स्त्री तन में है, लेकिन शक्ति तो आत्मा है। और इसीलिए अगर हम सोल कॉन्शियस वाली स्थिति में हैं, या यूं कहे हमारा जीवन सोल कॉन्शियसनेस के आधार से चल रहा है, हाँ, या यूं कहे कि हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि हम आत्मा है, तो मैं सजनी हूं ये सबको स्वीकार हो जाएगा, चाहे वो स्त्री तन में हो चाहे वो पुरुष तन में हो। लेकिन अगर वो भान है कि मैं पुरुष हूं, तो फिर शायद वो सजनी का भाव थोड़ा क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। लेकिन अगर आत्मा वाला भाव है तो बेशक हम सभी आत्माएं उसकी क्या है, सजनिया है, शिव साजन की। और शास्त्रों के अंतर्गत भी शिव शक्ति के विवाह को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम प्रेम गाथा माना जाता है। प्रेम की कहानी सृष्टि की सर्वप्रथम शिव और शक्ति के विवाह की ही कही जाती है, कि जहां शक्ति सजनी है और शिव क्या है, साजन है। और जब भी ऐसे विवाह हो तो विवाह में चुनरी जरूर होती है, बिना चुनरी के सजनी साजन के पास नहीं जाती है, या यूं कहें कि कई बार वो साजन ही उसको चुनरी उड़ाता है। तो जैसे हमने ये गीत सुना, सभी ने ध्यान से सुना इस गीत को, शिव साजन ज्ञान का दरिया, रि सजनी तू धोले मैली चुनरिया। अब बात आती है कि जब विवाह होगा क्या मैली चुनरिया उड़ेंगे क्या? विवाह में तो बल्कि क्या होता है, सब कुछ फ्रेश, सोलह श्रृंगार किए जाते हैं, रोबी बिल्कुल नए से नया, यूज किया वाला नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहिए होता है। और इस गीत में तो कह रहे हैं शिव साजन ज्ञान का दरिया, सजनी तू धोले मैली चुनरिया। तो क्या किस बात का ये संदेश है, किस बात का ये संदेश है, और कौन सी चुनरिया, हाँ चुनरिया कौन सी है, मैली कैसे हुई है, कब हुई है, और फिर अब कब धोना है, कैसे धोना है, वो सारा हमें समझना होगा। तो कौन सी चुनरिया है बताओ, आत्मा खुद ही चुनरिया है, सजनी खुद ही चुनरिया होती है क्या, सजनी सजनी होती है, चुनरिया चुनरिया है, ये रुमाल रुमाल है, मैं रुमाल थोड़ी हूं। यही तो पहला लेसन आप जिज्ञासु को सिखाते हो कि इसको क्या कहोगे, मैं रुमाल कहोगे मेरी रुमाल कहोगे, ऐसा ही सिखाते हो ना जिज्ञासु को फर्स्ट लेसन। तो मैं चुनरिया कैसे हो, तो सजनी ने ओढ़ी है चुनरिया, तो सजनी ने चुनरिया ओढ़ी है। हाँ, मन मैला हो गया है। तो बहुत सारी बातें हमें समझनी है जो हमें सचमुच पुरुषार्थ करने में मदद करती है। चुनरिया कौन सी है, क्योंकि आत्मा जब पहली बार परमधाम से उतरती है तो कैसी होती है, संपूर्ण पवित्र होती है। इतनी पवित्र कि कहने में आया गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात परमात्मा ने आत्मा को कैसे बनाया है, अपने ही स्वरूप में बनाया है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तुम परमधाम में होते हो बिल्कुल डिट्टो मेरे जैसे होते हो, कहते नहीं कहते बाबा मेरे जैसे, क्योंकि बच्चे हो ना मेरे, तो बच्चे बाप पर ही तो जाते हैं, तो हम भी बिल्कुल उसके जैसे होते हैं। और वहां से, लेकिन हम बच्चे हैं ना, हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं, जैसे कहा कि परमात्मा के लिए हमने सारे संबंध गाए हुए हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव। यहां तक कि जो लेसन कराते हैं बाबा के साथ कनेक्शन का आत्मा परमात्मा के बाद राजयोग, उसमें भी यही बताते हैं कि उस परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध है, हम उन्हें क्या करें, सर्व संबंधों से याद करें। और उन सर्व संबंधों में ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है संबंधों की, परंतु मुख्य मुख्य हम बता देते हैं। तीन तो बाबा रोज मुरली में बोलते ही रहते हैं, बाप टीचर सतगुरु, और तीन हम क्या सुना देते हैं नए जिज्ञासुओं को, साजन का, पुत्र का, मित्र का, ना यही बताते हैं। तो साजन सजनी का भी हमारा उसके साथ रिलेशन है, और इसीलिए शायद बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा जो है पियर घर है, और बाद में तुम्हारा घर कौन सा हो जाएगा, ससुर घर हो जाएगा, है ना। तो हम जब परमधाम से उतरते हैं तो बिल्कुल बाप समान होते हैं, बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप में होते हैं। और अगर आपने चंद्रमा को देखा होगा, पूर्णिमा का चांद, सोलह कला खिला चांद, तो चांद अपने आप में जो गोलाकार है उसके चारों तरफ और एक घेरा दिखाई पड़ता है उसके ही प्रकाश का, उसके ही प्रकाश का अपना एक घेरा होता है। जब वो पूरा खिला होता है तब वो क्लियर दिखता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी चूंकि संपूर्ण पवित्र है, जब पहली बार उतरती है तो आत्मा ज्योति बिंदु और उसके चारों तरफ उसके प्रकाश का आभा मंडल, उसको आभा मंडल ही कहते हैं, औरा ही कहते हैं। और फिर वो आत्मा कहां प्रवेश करेगी, गर्भ में जाकर प्रवेश करेगी। गर्भ में क्या तैयार है, शिशु आकृति तैयार है। उस शिशु आकृति में जाकर वो आत्मा प्रवेश करेगी, उसका थोड़ा शिशु का और विकास होगा, क्योंकि जब तक आत्मा प्रवेश नहीं की थी वो शिशु आकृति थी जरूर, पर जड़ थी। लेकिन आत्मा ने प्रवेश किया, उसमें चैतन्यता आ गई। आप माताएं बैठी हो, तब से ही हलचल आरंभ होती है बच्चे की। अब वो चैतन्य हो गया है शिशु, अब उसका और विकास होता है थोड़ा। जैसे कहते हैं ना, टेलर के पास जाते हैं कपड़ा सिलाने के लिए, तो सिलता तो है लेकिन ट्रायल लेता है, पहले पहन कर देखो ठीक फिट हो रहा है या नहीं, तो कहां कुछ कमी पेशी है एक बार पहन के देख लो, फिर मैं इसको बराबर कर दूंगा। ऐसे ही होता है ना टेलर के पास। तो आत्मा भी उसमें प्रवेश करती है, फिर कहां कुछ और ग्रोथ बाकी है वो उसकी होती रहती चैतन्य के आने के बाद, और वो आत्मा शरीर को लेकर बाहर आती है। अब मेरा सवाल आपसे, ये आत्मा है और ये शरीर है, ये दोनों है आपस में, शरीर के भीतर आत्मा, शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है, इन दोनों के बीच में जब मिलाप होगा वो कैसा वाला होगा? जिसे बताते ना दो नदियां मिल रही है, होता है ना मिलाप, माना ऐसे ही। इसका मिलाप कहां हो रहा है इन दोनों का? कहां मिलाप होता होगा बताओ? अभी जैसे ये है और ये है, इसका दोनों का मिलाप हुआ समझो, तो ये साइड और ये साइड आपस में मिले ना, कहने में आएगा ना। तो आत्मा का शरीर का मिलाप कहां हो रहा है? देखो, अज्ञान काल में थे तो सब कुछ यही था, मैं भी यही था, मेरा भी यही था। ज्ञान मार्ग पर आए, पता चला ये सिर्फ मेरा है, ये मैं नहीं है, ये क्या है? मेरा है। किसका? उस मैं का। और वो मैं कौन है? वो आत्मा। तो जो अब तक मुझे एक ही लगता था, उसको आके बाबा ने कह दिया दो अलग अलग है बोला। पहले एक ही था सब कुछ, उसी को दो में बांट दिया कि ये दो है, एक नहीं है, एक शरीर है और एक आत्मा है। फिर ज्ञान में थोड़ा आगे चले तो बोला इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। पहले दिन बताते हैं क्या? वो नहीं बताते हैं, है ना, सूक्ष्म शरीर भी होता है, भी पता चला। तो किसके अंदर है ये शरीर? इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर इन दोनों के बीच में है, डायरेक्ट इन दोनों का मिलाप नहीं हो रहा है। शरीर का जड़ शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में कौन आ गया है? सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उसका ज्ञान हमें है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन बुद्धि। सिर्फ मन बुद्धि है कि और भी कुछ है? और भी कुछ है। अंग्रेजी में हम बहुत जल्दी समझते हैं, हिंदी में नहीं समझते हैं जी, नहीं। हम कहते एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, बोलते हैं एक। हिंदी में फिर ऐसे समझते, एक है बाह्य मन, एक है अंतर मन, कहते नहीं कहते हैं। अब बाह्य मन क्या और अंतर मन क्या? बाह्य मन को अंग्रेजी में कहा गया कॉन्शियस माइंड, अंतर मन को अंग्रेजी में कहा सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे हिंदी में बाह्य मन को कहा गया सिर्फ मन, अंतर मन को क्या कहा गया? चित्त कहा गया। क्या कहा गया? चित्त कहा गया, मन। और इसीलिए कहते न मन में न चित्त में। कई बार सुना होगा, हाँ मुरली में भी कई बार आता है, बाबा जब बात कर रहे होते अपना सुना रहे होते, न मन में न चित्त में कि मैं ऐसा राजा बनूंगा। बाबा कई बार अपनी बात कैसे करते हैं, अभ्यास कैसे करते, मुरली में आता है ना कि न मन में था न चित्त में था, कि भगवान इतनी बड़ी बादशाही, हम तो थोड़ा बहुत मांग लेते थे, उसने तो क्या दे दिया हमें, विश्व की बादशाही दे दिया। तो न मन में था न चित्त में था, क्या मतलब होता है इसका? यही बातें हमें समझनी है। बेशक हम पहले दिन समझ लेते हैं मन बुद्धि संस्कार, क्योंकि स्कूल में जब जाएंगे तो पहले एबीसीडी तो पढ़ेंगे, सीधा टेंथ क्लास की किताब थोड़ी उठा के लाके देंगे आपके सामने, वो तो पहली दूसरी तीसरी चौथी आगे बढ़ेंगे ना। तो हमें भी इस ज्ञान की डेप्थ में जाना होगा, तभी तो पास विद आनर बन सकेंगे हम। तो चित्त क्या है अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे बहन जी ने कहा, चित्त हमारा पुराने जीवन का है, तो इस जीवन में चित्त है या नहीं है? सिक्का देखा है आपने? सिक्का देखा है? कई बार कुछ गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो सिक्का उछाला जाता है कि शुरुआत कौन करेगा। हाँ, तो उस शुरुआत कौन करेगा ये तय करने के लिए भी क्या करते हैं, सिक्के को उछालते हैं। और फिर कैसे उछालने के बाद क्या होता है कि तय किया जाता है, वो बोला जाता है कि चित्त किसका और पट किसका। दो पार्टी खेलेगी तो दोनों पार्टी को पहले तय कर लेना है कि तुमको चित्त चाहिए कि पट चाहिए। अब सिक्का उछाला जाएगा, जो आएगा वो विनर, मतलब वो अभी गेम को स्टार्ट करेगा, ऐसा ही होता है। अच्छा, उस सिक्के में भी चित किसको कहते हैं और पट किसको कहते हैं? भाई चित पट हम करके छाल रहे, अब आया क्या वो मालूम तो होना चाहिए, पट आया कि चित आया। हाँ, नहीं तो वहां पे भी उल्लू बना देंगे लोग। मालूम तो होना चाहिए चित क्या होता है, पट क्या होता है। तो अंग्रेजी में तो हेड और टेल बोलते हैं, हिंदी में चित और पट। तो चित कौन से वाले साइड को चित बोला जाता है और कौन से वाले साइड को पट बोला जाता है? देखो बेसिक चीजें हैं, बचपन से खेले होंगे ये सब, है ना, बेसिक चीजें है ना जी। ये तो अंग्रेजी में बता रहे हैं, अब बताओ हेड माना क्या होता है, टेल माना क्या होता है? जिस तरफ नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? जिस तरफ नंबर लिखा होता है, देखो स्कूल में हम पढ़े हैं ना, तो लिखते किस पे हैं जब स्कूल में टीचर पढ़ाता है, तो श्याम पट पर, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक बोर्ड कहते हैं। अब आप कह रहे जिस तरफ नंबर लिखा होता है तो किस पे लिखेंगे, पट पे ही तो लिखेंगे। क्योंकि कई बातें हमें याद नहीं रहती ना, तो याद करने की ट्रिक होती है, तो ऐसे नहीं आता समझ में, तो किसी के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। भाई लिखते किस पे है, श्याम पट पे लिखते हैं, इसलिए अंक इसमें लिखा है जिस साइड में, तो पट्टी तो होगा और क्या होगा, समझ में आया बहन जी? तो जिस साइड में अंक लिखा है वो है पट, ठीक है, और जिस साइड पे क्या होता है दूसरे साइड पे, चित्र होता है, शेर है माना चित्र। कई बार तो शासकों के भी हेड, इसीलिए बोला ना क्योंकि इतना वाला हिस्सा उसमें छपा होता है। आप देखेंगे कोई सिक्के में महात्मा गांधी का सिर है, तो किसी में नेहरू जी का है, तो किसी में इंदिरा जी का है, और पहले वाले जो शासक हुए कई बार हर एक के सिक्के ऐसे ही बनते रहे। तो जिस तरफ चित्र है वो है चित्र, जिस तरफ अंक है वो है पट, और अंक तो लिमिटेड ही होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 2000, 5000 लिमिट है ना, बोला जा रहा है ना, लिमिट है ना। तो पट हमेशा लिमिटेड होता है। स्कूल में ब्लैक बोर्ड में श्याम पट पर गुरुजी लिखते थे, तो क्या करते थे, लिख लिख के मिटाते थे, फिर लिखते थे, फिर लिख के, फिर, क्योंकि लिमिटेड स्पेस था उस पे। थोड़ा सा लिखा, समझाया, ब्लैक बोर्ड भर गया, अभी और समझाना, अभी मिटा दो इसको, फिर से लिखो और दूसरी बात समझाई, फिर बोर्ड भर गया, फिर मिटाओ इसको, ऐसा ही होता है ना। पट माना लिमिटेड, और चित माना अनलिमिटेड। क्लियर हो रही है बात? तो देखो, आप खाना खाते हैं, थाली पूरी भरी है, दाल चावल सब्जी रोटी फला फला, पूरी थाली भरी हुई है, ये पूरी थाली पेट में जाने वाली है, ये जो यहां रखा है ये पूरा पूरा यहां जाने वाला है, परंतु ये पूरा पूरा एक साथ नहीं जाएगा और न ही डायरेक्ट जाएगा, यहां से एक एक कौर मुंह में जाएगा और फिर वहां से उतरकर इधर जाएगा, तो जाएगा लिमिटेड, लिमिटेड लिमिटेड जाके सारा अनलिमिटेड यहां हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही मन में भी क्या होता है, क्योंकि मन है पट, मन है स्क्रीन, मन है ब्लैक बोर्ड। अभी जो बात सुन रहे हो ना आप, वो अभी ताजा है बिल्कुल, लेकिन जहां से क्लास शुरू होगी, शुरू की थी, वो निकल गई बुद्धि से, मन से, सरक गई ना वहां से। अभी मैं पूछूंगी पहली लाइन क्या थी क्लास शुरू होने की, तो क्योंकि निकल गई ना पट से, सरक गई ना, लेकिन अभी वाली पट पे तो तुरंत रिपीट करके दे दोगे, करोगे कि नहीं, क्योंकि अभी अभी वो सामने है, दिख रही है मेरे सामने। जैसे स्कूल में भी सर अगर पट में जो अभी लिखा हुआ है वो पूछेगा तो पढ़ के मैं सुना दूंगा, लेकिन मिटाने से पहले जो लिखा था वो पूछे तो थोड़ा याद करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा या नहीं। तो जो मिटाया वो गया कहां, क्योंकि सर किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों का काम है नोटबुक में नोट करते जाना, तो उसने तो भले मिटा दिया लेकिन बच्चों ने तो सब कुछ नोट किया है, बच्चों ने तो सब कुछ नोट कर लिया है। ऐसे ही मन पे तो एक चीज आई और दूसरी आते ही पहले वाली सरक गई, लेकिन सरक के कहां गई, चित्त रूपी नोटबुक में चली गई। समझ में आई बात? या चित्त रूपी पेट में चली गई, या चित्त रूपी हार्ड डिस्क में चली गई। हार्ड डिस्क होती है ना, और स्क्रीन पे कितना लिख सकते हो आप, मोबाइल के भी स्क्रीन पे कितना कर सकते हो बोलो, लेकिन सेव करते जाओ, सेव करते जाओ तो उसकी मेमोरी में बहुत कुछ सेव होगा कि नहीं होगा, लेकिन स्क्रीन पे कितना सेव होगा, लिमिटेड, और वो टेम्पररी, बटन सेव का नहीं दबाया, जब पूरी मेहनत करके लिखा था गया काम से, लेकिन सेव किया, चाहे गलत भी लिखा था वो भी सेव हो गया, गलती से किसी ने खोला, अच्छा इसकी भावना मेरे लिए ऐसी है, अभी मुझे समझ में आया, बाहर से तो बड़ा अच्छा दिखाता है, मेरे को तो गलती से मिल गई उसकी मोबाइल, मैंने देख लिया उसने मेरे लिए क्या क्या लिखा है। तो यहां पे हमने सिर्फ क्या क्लियर किया, भी मन और चित, तो वो है एक ही चीज, लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ऐसे ही मन के ये दो पहलू हैं। जैसे ये है तो एक ही चीज ना, एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं ना इसको, डाइजेस्टिव पाइप है ना पूरा, यहां से लेके यहां तक, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, अलग अलग नाम दे दिए गए उसको, जो होल्ड करता है उसको पेट बोल दिया, यहां से जो सीधा जाएगा कहां जाके ठहरेगा, पेट बोला। तो ऐसे ही मन इंद्रियों, इंद्रियां क्या करेगी, बाह्य दुनिया से सामग्री लेके आएगी। आंख क्या करेगी, दृश्य रूपी सामग्री लेके आएगी। कान क्या करेगी, करेगा आवाज रूपी सामग्री लेके आएगा। नाक क्या करेगा, गंध रूपी सामग्री इकट्ठी करेगा। त्वचा क्या करेगी, स्पर्श रूपी, ठंडा है, गर्म है, खुरदरा है, समतल है, स्पर्श नाजुक है, कठोर है, ये सब अनुभव होते हैं ना। जीवा क्या करेगी, खट्टा है, मीठा है, कसेला है, नमकीन है, ये सब सामग्री है। इंद्रियों की ये सामग्री है, ये सब इकट्ठा कर करके किसको देंगी, ये मन को पहुंचाएगी। लेकिन मन में तो लिमिटेड स्पेस है ना, तो मन फिर आगे किधर करेगा, चित्त के पास लेके जाएगा। तो ये चित्त, तो ये है आत्मा, ये है शरीर, बीच में है सूक्ष्म शरीर जिसमें ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय बोलते, अंतःकरण चतुष्टय, या यूं कहे कि चार सूक्ष्म इंद्रियां, ठीक है। अहंकार माना क्या, अहंकार मतलब मैं अपने आप को क्या मानता हूं, मेरी स्वयं के प्रति मान्यता, उसको कहते हैं अहंकार। तो अब हमने कहा मन क्या है, बाह्य मन है, और चित्त क्या है, अंतर मन है। तो अगर इस मन को मैं सिक्का समझूं, ये बीच में रखा है, तो एक साइड मन होगा और एक साइड चित होगा। अब इधर शरीर है, इधर आत्मा है, अब बोलो चित कौन से साइड में होगा और मन कौन से साइड में होगा। अभी तो बताया, इंद्रियां लेके आएगी, मन को देगी, हाँ, और फिर ये इधर अकेलेगा। इसका मतलब चित्त जो है आत्मा के करीब है, मन जो है शरीर के करीब है, और ये चित्त ही चुनरिया है, ये चित्त ही चुनरिया है, क्योंकि आत्मा इधर है, उसका आभा मंडल, और ये शरीर के अंदर है, लेकिन बीच में ये चुनरिया ओढ़ी हुई है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन शरीर के साथ नहीं हो सकता है। और चित्त भी अपने आप में बहुत सुंदर सात्विक रचना है, प्रकृति की, पारदर्शी, और अगर ये आत्मा जो परमधाम से अभी उतरी है, यहां पे आत्मा है और यहां पे चित्त है, इसका प्रकाश जो चित्त बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शक है, पूरा प्रकाश बाहर इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। मैं आपको इसके लिए बहुत सरल करने के लिए उदाहरण दे दूं। बल्ब देखा है सभी ने, बल्ब, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कौन जलता है, कौन प्रकाशित होता है, फिलामेंट प्रकाशित होता है। लेकिन वो फिलामेंट चारों तरफ उसके क्या होता है, कांच का कवर होता है, कांच का कवर है उसके चारों तरफ। अब कांच अगर पारदर्शी है, साफ सुथरा है, तो जो फिलामेंट प्रकाशित हुआ है स्विच ऑन करने से, तो फिलामेंट का प्रकाश उस कांच पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अंदर वाले कांच के हिस्से में भी और बाहर वाले कांच के हिस्से में भी। तो हम जब स्विच ऑन करते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, क्या प्रकाशित हुआ है, कांच प्रकाशित हुआ है या फिलामेंट हुआ है। पहले कांच के पास अपना प्रकाश नहीं है, समझ में आ रही बात, प्रकाश उसको कौन दे रहा है? फिलामेंट दे रहा है, लेकिन कांच पारदर्शी जरूर है, साफ सुथरा जरूर है, और इसलिए वो फिलामेंट का प्रकाश जब गमन कर रहा है, इसको पहुंच रहा है, तो पूरे कांच को अंदर वाली सतह चाहे बाहर वाली सतह दोनों को क्या कर दिया उसने? प्रकाशित कर दिया। तो ये चुनरिया आरंभ में कैसी है? पूनम की चांद की तरह हुई ना, चमकती हुई, सोलह कला वाली। पूनम के दिन चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? आज चंद्रमा सोलह कला खिला है, और इसी कारण सोलह श्रृंगार का महत्व चला आया है। लौकिक रीति से अगर सोलह श्रृंगार करेंगे तो क्या क्या होते हैं सोलह श्रृंगार, बोलो? हाँ, नख से लेके शिख तक सजी हुई होनी चाहिए, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक श्रृंगार ही श्रृंगार। तो कौन कौन से श्रृंगार होते? ऊपर से शुरू करें, नीचे से शुरू करें? ऐसे याद नहीं रहता है, परंतु इस तरीके से याद करेंगे तो सब समझ में आ जाता है। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। आत्मा बिंदी, तिलक लगाते तो तिलक बहुत जरूरी होता है, ये पहला श्रृंगार है। फिर इधर चिंदी, चिंदी होती है ना जो लटक रहा है ऐसे, जिसमें मांग भरी जाती है। हाँ, बाबा की भाषा में बिंदी और चिंदी, इसको बिंदी कहते हैं, इसको चिंदी कहते हैं। हो गए दो श्रृंगार यहाँ पे। इसके बाद कौन सा श्रृंगार चाहिए? ये हो गया आत्मिक स्मृति। इसीलिए तो टीका लगाते हैं ना पहले दिन तिलक, किसी को भी कोई भी कार्य में क्यों लगाते? आत्मिक स्मृति हो हमारी। और ये चिंदी किस लिए है? कि अब आत्मिक स्मृति, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, अब हर अगला व्यक्ति भी आत्मा है। और आत्मा आत्मा हम क्या है, चाहे मेल चोले में है चाहे फीमेल चोले में है, वो तो भौतिक रूप से, लेकिन अब चूंकि मेरी आत्मिक स्मृति जाग गई है तो अगले को भी मैं कैसे देख रही हूं? आत्मा रूप में। तो आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई भाई की वृत्ति, बिंदी और चिंदी। फिर काजल, आत्मिक दृष्टि। काजल के बाद नथुना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, दो कानों में कुंडल, एक बाबा से ही सुनना है, होठों पे लाली, इस होठों से अगर बोल निकलेंगे तो रूहानियत भरे बोल निकलेंगे, मुस्कान होंगी तो रूहानियत वाली होगी, वो लाली इस होठों पे। और पूरे फेस को भी चमकाते हैं ना, जिसको उस दिन दीदी कहते फेशियल मेकअप। हाँ, काय का मेकअप, दिव्यता, पूरे फेस से दिव्य गुणों की झलक मिले। फेस देखकर ही तो बताते, अरे वो तो बड़े गुस्से में था। फेस देखकर ही तो बताते, अरे वो तो बहुत ममता पूर्ण थी। तो फेस से ही तो गुण बाहर आ रहे, पता चल रहे हैं। किसी को देखकर, अरे वो तो बहुत गंभीर दिख रहा था, वो तो बहुत शांत दिख रही थी। तो ये सब क्या है? गुण ही तो दिख रहे पूरे फेस से, गुण ही दिख रहे ना। तो दिव्य गुणों की झलक हो गए यहां का पूरा श्रृंगार। फिर अब माला, विजयी रत्नों की माला तो बाबा ने बता ही दिया है। फिर कंगन पहनेंगे ना, नहीं यहां पे एक छूट गया, देखो किसी को याद नहीं आया, ताज, पवित्रता का और विश्व सेवा का, दो ताज दिखाए ना। तो कितने हो गए श्रृंगार पहले गिलो, यहां तक कितने हो गए, क्योंकि 16 पूरे करने हैं हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, गले में 9। अभी आ जाइए यहां पे, ये 10वां कंगन किसका? हाँ, कंगन मर्यादाओं का। अंगूठी ग्रहचारी से, माया की ग्रहचारी क्यों पहनते लोग अंगूठी बताओ? अंगूठी किस लिए पहनते? बोलते अरे इतनी सारी अंगूठी क्यों पहने? अरे ये रतन की अंगूठी है, किसी ने मुझे बोला है, गुस्सा आता है ना आपको, ये पहनो। अब गुस्सा क्या है? माया है। तो माया की ग्रहचारी से सेफ रहने के लिए अंगूठी पहनी जाती है ना। कितने हो गए? फिर बाजूबंद, बाजूबंद भी पहनते कि नहीं पहनते हैं? तो किस चीज का होगा बाजूबंद? भगवान की भुजाएं हैं, खुदाई खिदमतगार में हम हैं। फिर कमर का पट्टा कितने हुए? 13। फिर नीचे कमर का पट्टा किस चीज का? दृढ़ता का। और नीचे आएंगे तो घुंघरू पहनेंगे, तो घुंघरू पायल उमंग उत्साह के, और बिछुए हाँ ड्रेस, फरिश्तेपन की ड्रेस ही नहीं पहनेंगे तो फिर क्या? फरिश्तेपन की ड्रेस, बाबा कहते हैं चमकीली ड्रेसेस, ड्रेस बदली करो, जैसे ये ड्रेस से भी आप तंग हो जाते हो फंक्शंस में जाते हो, तो सुबह के फंक्शन में अलग ड्रेस, दोपहर के फंक्शन में, और विशेषकर वो आजकल ज्यादा हुआ है, बताए क्यों? क्योंकि आजकल वीडियो बनती है, तो वही वही ड्रेस दिखेगी क्या? इसलिए हर बार ड्रेस चेंज करके आते। तो बाबा भी कहते वही वही ड्रेस में क्यों रहते हो, हर बार अलग अलग चमकीली ड्रेस पहनो आप। और पैरों में जब आई थी बात पायल और बिछुए, बिछुए किस चीज के? वो भी मर्यादाओं के। तो 16 श्रृंगार अर्थात ये पूरा का पूरा हमारे जीवन में हो, तब कहेंगे हमारी चित्त रूपी चुनरिया 16 कला वाली है। लेकिन तब कहेंगे वर्तमान में कैसी है? उसने गीत ने तो बोल दिया ढोले मैली चुनरिया, तो ये वर्तमान में ये चुनरिया क्या हो गई है? मैली हुई है। जब पहली बार आए थे ये चुनरिया सचमुच 16 गला वाली थी, लेकिन इस धरती पर आकर रंगमंच पर पार्ट प्ले करते करते ये चुनरिया, जैसे पूनम के बाद अमावस होती ही है ना, होती है ना, संभव ही नहीं है कि हमेशा पूनम रहे, तो हमारी भी वही चुनरिया क्या होने लगी? धीरे धीरे मैली होने लगी। अब किससे मैली हुई? तो गीत में उसका पूरा वर्णन आ गया था, काम काम क्रोध ने मारी पिचकारी। तो 16 श्रृंगार कौन से थे देखे ना? तो अगर मुझे ये भट्टी है जो आपको बोला गया था चेकिंग करो, किस चीज की चेकिंग करनी थी, क्या होना चाहिए, वो कितना है मेरे जीवन में, क्या नहीं होना चाहिए वो भी कितना है, जो नहीं होना चाहिए उसको निकालना है, जो होना चाहिए उसको भरना है, और ये जब तक एकांत नहीं मिलेगा कब सोचेंगे? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जिम्मेवारियों में हम लगे हुए हैं, तो सोचने का टाइम नहीं मिलता, और तभी हम बाबा को मीठी मीठी कंप्लेन करते हैं, बाबा आप कहते हो स्वउन्नति करो, लेकिन बाबा सेवाओं में इतना टाइम चला जाता है, स्व के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो बाबा ने आपको टाइम दे दिया स्व के लिए, और विशेष कोरोना काल में तो बहुत मिला था टाइम। फिर भी लोगों ने कहा कि भले कोरोना काल था, फिर भी सोचना तो पड़ता था ना, दूसरी जिम्मेवारी आ गई, जो सब्जियों को इतना सारा नहीं धोना पड़ता था उतना धोना पड़ा, हर चीज को पोछो पहले, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, वही काम बढ़ गया था बोले, है ना, कि सब्जी आएगी पहले पड़ी रहेगी, छूना नहीं है दो तीन घंटे तक, क्या क्या खेल चला था। तो भले कि दूसरे काम छूट गए थे तो नए काम आ गए थे उसमें, भय कितना बढ़ गया था, तो बुद्धि वहीं लगी हुई थी। तो भट्टी रूपी समय बाबा ने आप सबको दिया कि ये 16 श्रृंगार मेरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, मैं देखूं मेरी दृष्टि में अभी रूहानियत कितनी आई है, मेरी स्मृति में, मेरी वृत्ति में कितनी रूहानियत आई है। पहला ही लेसन हमारा आखिरी लेसन है सोल कॉन्शियस वाला, दिल पर हाथ रखकर देखें क्या मैं 24 घंटा सोल कॉन्शियस रहती हूं, आत्माभिमानी स्थिति रहती है मेरी इतनी। जब बाबा के नहीं बने थे तो कंप्लीट बॉडी कॉन्शियस थे, बाबा के बने तो पता चला सोल कॉन्शियस रहना चाहिए, पर रहते कितना है, क्योंकि अभी तक तो हम 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियस में थे, और अभी मुझे आज बताया गया कि ये कॉन्शियस गलत है, अभी मुझे चेंज करना है। तो चेंज करना है तो जो आदत 63 जन्मों की पड़ी है, अब उस आदत को बदल के एक नई आदत डालना है, तो डेफिनेटली वो आपसे आपके अटेंशन की मांग करेगा। तो क्या मैं इतना अटेंशन रखती हूं, चेकिंग करती हूं कि मैं जो किन के साथ संपर्क में आई, संबंध में आई, वाचा में आई, कर्मणा में आई, तो मेरी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस थी, मैं आत्माभिमानी स्थिति में थी या वही देहाभिमान वाली स्थिति में ही सब कर रही थी। यही तो चेकिंग है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं जी क्या चेकिंग करें खुद की, सब कुछ तो ठीक चल रहा है जीवन में, लेकिन नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन किस रीति से ठीक चल रहा है। वो तो फिर ऐसा होता है जब अति होती है तब कहते हैं भगवान बचाओ, तब हम बाबा के पास है, तब बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी हालत इसलिए ऐसी हुई है क्योंकि तुम देहाभिमान में आए। तो जब हालत ही देहाभिमान के कारण हुई है, और अगर मैं अभी भी देहाभिमान में जी रहा हूं और कहूं सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये सही तो नहीं है ना। यही चेकिंग की आवश्यकता होती है, और इसी के लिए रियलाइजेशन के लिए समय दिया जाता है कि अपने आप से बातें करनी होती है, इनर डायलॉग करना होता है, उसको स्वीकार करना होता है। किसके पास? बाबा के पास, सबके पास नहीं। सबके पास करेंगे तो क्या कर होगा, उससे बात बड़ी हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। बीमारी भी सबको थोड़ी बतानी होती है, जो डॉक्टर है, जो जानता है उसको बताएंगे तो फायदा है ना, बिना मतलब इधर उधर बोला तो क्या होने वाला है। वो तो बातें बड़ी, अरे आपको बताएं फलाने को कैंसर है, वो क्या करने वाला है, तुम्हारी और ही हालत खराब कर देगा इसके उसके कान भर के। जहां से इलाज होने वाला है उसको बताना होता है। तो ये भीतर की चेकिंग, कि मेरे अपने चित्त को मुझे इतना चमकाना है। ये चित्त अभी मैला हुआ पड़ा है, कैसे मैला? तो उसी बल्ब में आ जाओ कि वो जो बल्ब है कि पारदर्शी है पूरा कांच, तो पूरा प्रकाश फिलामेंट से जो निकल रहा है बाहर आ रहा है। लेकिन ये नियम है कि प्रकृति से कुछ न कुछ हवा धूल मिट्टी के झोंके उस पर पड़ेंगे और उसकी पारदर्शिता को कुछ चिपकेगा ना उस पर। डस्टिंग क्यों करनी पड़ती है रोज? क्यों करनी पड़ती है डस्टिंग? क्योंकि पता है ये धूल मिट्टी उड़कर आते हैं और दूसरे दिन फिर से डस्टिंग करके हटाना पड़ता है। तो लोग कई बार कहते कल ही तो डस्टिंग की है, सब तो ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी जो धूल चढ़ी है ना, चढ़ी जरूर है परंतु विजिबल नहीं, दिखाई नहीं पड़ रही। सिर्फ दो तीन दिन छोड़ दो फिर पता चलेगा कि धूल जमी है कि नहीं जमी है। तो धीरे धीरे चढ़ती है, लेकिन हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो धूल की परत जो है क्लियरली दिखाई देने लगती है। सिर्फ क्लियरली दिखाई देने नहीं लगती है, वो प्रभावित करती है उस प्रकाश को जो भीतर से बाहर आता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जितना प्रकाश धूल जमने से पहले आ रहा था, अब हर दिन धूल बढ़ती जा रही है। तो कपड़े भी तीन प्रकार से मैले होते हैं ना। एक कपड़ा होता है डस्टिंग का, एक कपड़ा होता है पोछे का, और एक कपड़ा होता है किचन में जो तेल और मसालों से मस्त भर जाता है। अब इन तीनों की धुलाई एक ही रीति से होगी। डस्टिंग वाले कपड़े को धोना है तो पानी में जाके ऐसा ऐसा कर दिया, साफ हो जाएगा। पोछे वाले कपड़े को थोड़ा सा मजबूत वाला डिटर्जेंट लगा के, साबुन लगा के रगड़ेंगे तो साफ हो जाएगा। और तेल और मसालों से युक्त कपड़े को साफ करना है तो गरम पानी डालो, हाँ स्ट्रांग वाला डिटर्जेंट डालो, फिर सटके लगाओ, हाँ सोंटे मारो उसको, फिर भी नहीं निकलता। देखो माताओं को अनुभव है। तो मुझे ये चेक करना होता है मेरी चुनरिया किस टाइप की है, डस्टिंग वाले कपड़े वाली है, समझ में आ रहा है क्या? कई बार समझ में ही नहीं आता है चेकिंग क्या करनी है। तो वहां पे तो कहा कि प्रकृति की धूल मिट्टी चढ़ी और इस चित्त के ऊपर कौन सी धूल मिट्टी चढ़ी, तो बाबा ने कहा दो युगों तक तो आप नेचुरल सोल कॉन्शियस थे, फिर तुम बॉडी कॉन्शियस बने, और जैसे ही बॉडी कॉन्शियस हुए देह अभिमान जागा, धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मिट्टी के रूप में इस पर चुनरिया पे चढ़ते गए। लेकिन शुरुआत उसकी चढ़ने की कहां से हुई थी? द्वापर से। फिर उसको धोया कभी? पता ही नहीं था, तो सोचो कितनी मैली हुई होगी। सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह नहीं, उसमें वर्णन और आया, आलस्य भय चोरी चुगली, हाँ बहुत कुछ। और गीत में आखिर कितना वर्णन, वो तो सैंपल है ना सिर्फ। जिद्दी हो गया, सिर्फ जिद्दी नहीं हुआ, और उसमें ये बताया कि मन में भ्रांतियां पैदा हो गई, क्योंकि आत्मा भी प्रकाश उतना नहीं मिलने लगा, इसीलिए तो बॉडी कॉन्शियस में हम बदल गए। उसका दिखना बंद हो गया ना हमें, तो दिखना जब बंद हो गया तो हमने सोचा हम आत्मा नहीं, हम कौन है? शरीर है। और उस शरीर में रहकर हमने बहुत कुछ किया, क्योंकि आत्मा आत्मा तो भाई भाई तो सब समान थे, एक ही परिवार के, लेकिन आत्मा आत्मा भाई तो भूल गए ना हम, तो ऊंच नीच ये वो सब समझ में आ गया, तो उसमें सबके प्रति एक जैसी दृष्टि वृत्ति तो रही नहीं। और मुझे तो एन के एन प्रकरण ऊंचा होना है, दूसरे का जाए कुछ भी हो जाए, उसको डांट लगाऊं, उसको लूटूं, उसका धोखा हो जाए, उसका कुछ भी हो जाए, पर मेरा अच्छा हो जाए, ऐसा बहुत कुछ किया सभी ने, बहुत कुछ चढ़ गया, इतना कि कहा मन में भ्रांति पैदा हो गई, प्रभु प्रेम प्रभु से दूरी, प्रभु पिया से दूरी बढ़ गई। लेकिन फिर उसने बताया लास्ट वाले में, आबू में धो रहे हैं शिव साजन, आबू में धो रहे शिव साजन, चुनर बने अति मन भावन, ऐसे धोते हैं कि चुनरिया बिल्कुल मन भावन बन जाती है, और धोते किससे है तो बोला ज्ञान की धारा लेके आए हैं, हाँ गीता ज्ञान की धारा लेके आए, ज्ञान योग से किन्हीं सफाई, 16 कदा की चुनरिया बन गई, धोली चुनरिया, पहले बताया मैली कैसी हुई है, फिर बताया साफ कैसी हुई। तो यही तो कर रहे हैं भट्टी में, और क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना भट्टी में, तो अपने को क्या करना है, उसमें तो कपड़े को पकाते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, सटके डालते हैं, अभी अपने को क्या करना है बोलो। हाँ यही कहा कि बैठो ज्ञान का बारंबार, और सब दुनिया की सब बातों से अपने आप को अलग, सिर्फ और सिर्फ आत्मोन्नति का सोचो, आत्मा में ज्ञान भरो, योग करो, भीतर में देखो, चेकिंग करो, ज्ञान सुन सुन के, ये नहीं होना चाहिए पर है, ये होना चाहिए ये नहीं है, तो बाबा के साथ सब कुछ शेयर करना, स्वीकार करना सच्चे दिल से, वो प्रायश्चित फील होना कि सचमुच जो नहीं होना चाहिए वो अभी तक हो रहा है, और जो होना चाहिए वो अभी तक, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, पर जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसी की रियलाइजेशन के लिए भट्टी। और कल ही इतना बड़ा समर्पण समारोह हुआ है, तो आप भी यही समझो कि इस भट्टी में हम भी उस साजन की सजनियां हैं, हाँ तो चुनरी कैसी होनी चाहिए हमारी, साफ एकदम। तो जब ये भट्टी करके यहां से जाएंगे, अवश्य हम समझते हैं कोई 3-4 दिन में चुनरियां इतनी मैली वाली साफ नहीं होती है, पर एटलीस्ट रियलाइजेशन तो होती है ना, कपड़ा लाके दिया किसी ने मैला कि मुझे ये धोके दीजिए, लेकिन बहुत गंदा है तो हम कहते हैं ऐसे कैसे साफ होगा, अभी इसको तो पहले भिगाना पड़ेगा काफी देर, अभी अभी नहीं धुल सकेगा, कितनी उसके अंदर धूल मिट्टी उसने सोख लिया है भीतर तक, वर्षों से इसको धोया नहीं गया है, इसको तो मैं 4-5 बार भी डिटर्जेंट से निकाल निकाल कर सट के लगा लगा के फिर डुबाऊंगी, फिर मैल निकलेगी, अनुभव है ना माताओं को, इतना मैला। तो रियलाइजेशन तो हो सकती है कि नहीं होती 3-4 दिनों में, बाबा के इस परिसर में बैठकर कि जहां हम कहते हैं कि आते ही हम हल्के हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो रियलाइजेशन तो हो सकती है नहीं हो सकती है, तो उसी के लिए आपको स्वर्णिम अवसर मिला, और अवश्य सभी ने उस लक्ष्य अनुसार चल रहे होंगे, और अगर उस तरफ इतना अटेंश, क्योंकि क्लैरिटी ही अगर नहीं है तो इसीलिए क्लैरिटी दी जाती है कि इस क्लैरिटी के आधार से भीतर झांको, ऐसी चुनरिया साफ हो जाए कि आत्मा बिल्कुल आर पार दिखे, तभी तो बाबा कहते हैं कि चेहरे से प्रत्यक्षता हो, देखे आपको पर दिखाई क्या पड़े, क्या निकले उनके मुख से, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो हमारे को देखकर उस तरफ ध्यान चला गया ना, तो इसी को तो कहेंगे भगवान की प्रत्यक्षता, अपने चेहरे और चलन से। लेकिन अंदर वाली चुनरिया जिसको पार करके आत्मा का प्रकाश बाहर आता है, अगर वो ही मैली पड़ी है तो क्या यहाँ पे आएगा, फिर तो बाहर का ही फेशियल करना पड़ेगा, तभी सुंदर दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। तो क्लियर हुआ, शिव साजन ज्ञान का दरिया तू धोले मैली चुनरिया। तो इस भट्टी में आपको यही करना है, आज शाम का भी वक्त है आपके पास 5 से 6, आपको लगता होगा ये क्या एकांत में छोड़ देते हैं, क्यों नहीं कमेंट्री से योग कराया जाता है, कभी कभी मन में आता भी होगा प्रश्न, पर एकांत इसलिए झांकोगे कब अपने भीतर, इसके लिए घर में एकांत में बैठने जाओगे कहोगे बैठा था, इधर से फोन आया, उधर से घंटी बजी, कुकर की सीटी बजी, इधर ये हुआ, चाहे घर चाहे दुकान, यहां तो कोई काम कारोबार नहीं है, तो यही तो एकांत में बैठने का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है शाम का, द रियलाइजेशन को तो कम से कम दृढ़ कर सकते हैं, और उस महसूसता के आधार से बाबा के पास जाके संकल्प करें, बाबा को सब कुछ दे दे कि जी बाबा ये कमियां है, ये भरना बाकी है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं, और उस दृढ़ संकल्प के साथ बाबा के साथ योग लगाओ, योग भी पावरफुल होगा, और उसी पावरफुल योग से फिर जो जो आप संकल्प कर रहे हो बाबा के सामने वो प्रैक्टिकल करने में सफलता मिलेगी। ओम शांति।
Thank you. सभी एक हाथ की ताली से दीदी का थैंक्स करेंगे। दीदी ने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत गहरी गहरी बातें बताई, मन और चित्त का डिफरेंस बताया, 16 श्रृंगार के बारे में इतना सरल रीति से बताया, और समय प्रति समय बीच बीच में हमारे पास आते रहे, सभी वक्ताओं का परिचय देते रहे, लेकिन दीदी आपका परिचय रह गया। आपका परिचय आपके मुखारविंद से सुनेंगे।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में घर बैठे बाबा का ये ज्ञान मिला और फिर 1998 में समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। शुरू के 5 वर्ष ज्ञान सरोवर अकेडमी में जो स्पार्क ऑफिस है वहाँ पर सेवाएं देने का अवसर मिला और उन्हीं 5 वर्षों के दौरान बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने के, जिस पुस्तक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो इतनी मोटी है और लिटरेचर तीनों ही कैंपस के साहित्य विभाग में वो पुस्तक मिलती है, 75 रुपए की है और वो विशेष करके बाबा के मुरली के पॉइंट्स का कलेक्शन है, खास इस टॉपिक पर मनोबल और मनसा सेवा। तो उसका 2 खंड है, एक खंड में सैद्धांतिक माना बाबा के महावाक्य और दूसरे हिस्से में उन्हीं महावाक्यों के आधार से कि प्रैक्टिकल में क्या करना है, तो प्रायोगिक खंड है। इस प्रकार से वो इतनी मोटी पुस्तक जो बाबा ने स्वयं 2001 में डायमंड हॉल में अपने ही शुभ हस्त कमलों से उसका विमोचन किया था और उसके बाद चूंकि हम गोंदिया से हैं जो नागपुर सब जोन में पड़ता है, तो नागपुर में फिर हमें रहने का सुअवसर मिला। स्पार्क ऑफिस में सेवाएं देने के बाद नागपुर सेवा केंद्र पर रहे और चूंकि स्पार्क से जुड़े थे तो रमेश भाई उषा बहन से जुड़े थे, उन्होंने फिर गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया और गामदेवी के बाद चूंकि शुरुआत तो हमारी हेडक्वार्टर से हुई थी, वापस बाबा ने हेडक्वार्टर में चांस दिया। शुरुआत हुई थी ज्ञान सरोवर के स्पार्क ऑफिस से और फिर बाबा ने चांस दिया पांडव भवन के ग्लोबल ऑफिस में। तो 2009 से हम ग्लोबल ऑफिस जो शीलू बहन निमित्त है उनके, तो चूंकि हम उनके साथ हैं तो जो उनकी सेवाएं हैं हम उसमें अपना सहयोग देते हैं।